آج انشاءاللہ تعالی ہم گناہوں کے اسباب میں سے ہی مزید اسباب دیکھیں گے اور اللہ تعالی سے یہ دعا کریں گے کہ وہ ہم سب کے لیے گناہوں سے بچنا اتنا ہی آسان کر دے جیسے ہم دنیا کی باقی نقصان دہ چیزوں سے بچتے ہیں. میں اور آپ اپنی زندگی میں لے کر دیکھیں تو ہمیں انشاءاللہ اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ بھی ہوگا اور خیر کا بھی ذریعہ بنے گا, کیونکہ جس چیز کو ہم خطرناک سمجھتے ہیں ہم اس کو اپنی زندگی سے ہر ممکن دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جتنا زیادہ آپ اور میں اپنے آپ کو ان چیزوں کے قریب کریں گے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں, اتنا ہی ہم اللہ تعالیٰ کا قرب بھی پائیں گے. تو آئیے کچھ چیزیں مزید سیکھتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے ان ساری چیزوں کو سمجھنا آسان کر دے اور ہم خیر و عافیت کے ساتھ اس سفر کو طے کرتے ہوئے اللہ کی رضا میں پہنچ جائیں. شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. گناہوں کے برے اثرات, اس میں سے ہم کافی چیزیں دیکھ چکے جس کے بعد واقعی ایسے لگتا ہے کہ سب سے خطرناک چیزوں میں سے ایک چیز گناہ ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب دنیا کی محبت اور خود فریبی کا پردہ آنکھوں پہ آتا ہے تو اس کے بعد پھر گناہ اتنے برے نہیں لگتے. بندہ سمجھتا تو ہے کہ یہ بری چیز ہے لیکن اس کو اتنا برا نہیں سمجھتا. یہ ایسی جیسے ایک چیز کھلی دیکھے لیکن دوسری صورت ہے کہ اس کے اوپر کوئی پردہ ڈال دیا جائے تو پھر وہ پردے کے اندر سے اس طرح سے چیز نہیں نظر آتی. بہت سارے لوگ جو گزر گئے دنیا سے انہوں نے گناہوں کو اپنے لیے ہلاک کر دینے والا سمجھا اور یہی وجہ ہے کہ وہ گناہوں سے ایسے ڈرتے تھے, جس میں کہ روایت ہمیں صحابہ کرام کے گناہوں سے خوفزدہ ہونے کو بہت اچھی طرح واضح کرے گی. فرمایا آپ نے, کیا مومن سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں, لیکن اس کو ایسے لگتا ہے کہ اس کے پاس ایک پہاڑ تھا اور وہ پہاڑ اب اپنی جگہ سے ہٹ کر اوپر آ جائے گا, اس کے سر پہ کھڑا ہو جائے گا. اس کے برعکس منافق جو ہے وہ گناہ کو ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح اڑا دیتا ہے. اگر میں اور آپ اپنے اوپر لے کر دیکھیں تو بات تو واقعی سچ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں کی شدت کا احساس لگوا دے اور ہم بہتر طریقے سے اس چیز کو سمجھیں. پھر ہم نے لاسٹ نشست میں گناہوں کی قسمیں دیکھی تھیں. گناہوں کی جو بڑی مشہور تقسیم ہے ہمارے پاس وہ صغیرہ اور کبیرہ کی ہے, اور ہم نے دیکھا تھا کہ صغیرہ اور کبیرہ کو ایک لائن میں رکھ کے آپ نہیں دیکھ سکتے. یہ سمجھ لیجئے کہ جس کی نافرمانی ہے وہ بہت بڑی ہستی ہے, لیکن اس کے برعکس عام لوگوں کی کیا عادت ہوتی ہے, وہ گناہوں کے بارے میں کیا کس قسم کی باتیں سنتے ہیں وہ دیکھا. پھر ہم نے علماء دنیا اور علماء آخرت کا فرق دیکھا تھا کہ کچھ دنیا کے لیے اور کچھ دین کے لیے جیتے ہیں, ہر ایک کا گناہ فرق ہے. آج ہم جو پڑھیں گے بک کے اعتبار سے دیکھیں تو پیج نمبر 43 کا مڈل ہے, دل کا زندہ ہونا اور مردگی چھا جانا عمل کی سرے دس جزا و سزا ہے. یہ لکھ لیجئے. اس کو آسان جملوں میں بولوں گی تو انشاءاللہ آپ اس کو جذب کر سکیں گے. گناہوں کے ساتھ دل مردہ ہو جاتا ہے اور نیکیاں دلوں کی زندگی ہیں. جب دل مردہ ہو جائے تو سمجھیے کہ گناہ ہو گیا اور یہ گناہ کا اثر ہے, اور اس کے برعکس دوسری صورت ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ آخرت کی چیزوں کے نمونے ہیں. البتہ اشیاء میں فرق ضرور ہے, جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, لیس فی الجنت شیئن, نہیں ہے جنت میں کوئی بھی چیز, یشبہ ما فی الدنیا الا آسمان, یعنی جنت کی چیزوں کی دنیا کی اشیاء کے ساتھ صرف ناموں میں مشابہت ہے, یعنی صرف نام ملتے ہیں, اصل میں آخرت کی چیزیں دنیا سے بہت مختلف ہوں گی, اور اس جنت کا تو تصور بھی نہیں آنکھوں میں آتا, یہ تو صرف ہم اپنی خوشی کی خاطر ان کو دنیا کی چیزوں سے ریلیٹ کر دیتے ہیں. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نعمت دے کر جنت کی نعمتوں کی طرف شوق دلایا ہے اور دنیا کے عذاب سے آخرت کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں. چنانچہ دنیا میں ہر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا اور ہر گناہگار کو گناہ کی سزا مرنے سے پہلے بھی مل جائے گی. اس آیت کا بھی یہی مطلب ہے کہ میں یعمل سوئیں یجزب ہی, جو کوئی برا عمل کرے گا وہ اس کی جزا پائے گا. بس اوقات گناہگار اپنے بدن کی سلامتی مالی فراوانی کو دیکھ کر یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ اس کو سزا نہیں مل رہی, हालांकि वो सज़ा में मुब्तला होता है, मगर इसको इस सज़ा का इदराक नहीं होता, यानी इसको पाता नहीं है, समझता नहीं है। हालांकि हुक्मा का कौल है, गुनाह के बाद दूसरे गुनाह का मुर्तकिब होना, यानी दूसरा गुनाह करना, पहले गुनाह की सज़ा है, और नेक अमल के बाद दूसरे नेक अमल की तौफीक मिलना नेक अमल का बदला है। कभी ये सज़ा मानवी भी होती है, यानी मानों में मिलती जुलती होती है, जैसा कि बनी इसराइल के किसी आलिम का वाक़या है कि इसने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि या रब, मैंने कितनी बार आपकी नाफरमानी की, आपने सज़ा ना दी। क्या जुमला है, सुनिएगा। ए रब, मैंने कितनी बार आपकी नाफरमानी की, आपने सज़ा ना दी। आवाज़ आई, कितनी बार तुझे सज़ा मिली मगर तुझे इसका इदराक नहीं हुआ। क्या मैंने तुझको मनाजात, यानी अल्लाह से मांगने, अल्लाह से प्यार से, लाड से मांगने की हलावत और मिठास से महरूम नहीं किया, यानी तुझे अल्लाह से मांगने में मज़ा ही नहीं आता, दुआ करने को तेरा दिल ही नहीं करता। जो शख्स इस पर गौर करेगा वो इस हकीकत को पा लेगा। देखिए, इस पे एक छोटी सी मैंने शॉर्ट रिमाइंडर भी दिया था कुछ दिन पहले कि जब हमें दुनिया में गुनाहों की सज़ाएं मिलती हैं तो इसका ये नहीं मतलब कि अल्लाह हमसे सब छीन लेता है, बल्कि अल्लाह नेकियों की तौफीक छीन लेता है। नमाज़ों का शौक़ चला जाता है, कुरान से मोहब्बत चली जाती है, सदका खैरात को दिल नहीं करता। तो मैं और आप ज़रा सा ख़ुद को तो चेक करें, दीन और दीन के कामों की सारी लगाई हुई पाबंदियाँ और उसके कवानीन की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है? क्या दिन रात बीसियों बार हम इनको नहीं तोड़ते? देखा जाएगा, हो जाएगा, फिर क्या करें, फिर आज के दौर में नहीं हो सकता, और अल्लाह को मेरा पता है, और मैं अब किस किस बात पे रुकूं, मैं किस पे ना रुकूं, हर एक अपने आप को बेहतर जानता है, आप मुझे नहीं और मैं आपको नहीं। बस इतना सोचिए कि अल्लाह से ताल्लुक़ है और अल्लाह के दीन की मेरी नज़र में कितनी हैसियत है। फिर इसके बाद हज़रत वहब बिन अलविर्द से किसी ने पूछा, क्या गुनाह करने वाला इताअत की हलावत और शिरीनी को महसूस करेगा, यानी गुनाह करने के बाद क्या अल्लाह की बात मानने में मज़ा आता है? तो फरमाया, गुनाहगार कैसे महसूस करना, तो कुजा कुजा मीन बड़ी बात है, जो गुनाह का इरादा भी करेगा वो इताअत की लज्जत और हलावत को नहीं पाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ए अल्लाह, तो हमें ये सज़ा ना देना कि हमें तेरी इताअत, तेरे दीन, तेरी बात मानने में मज़ा ही ना आए। बसारत की लगाम को खुला छोड़ने वाला बसीरत से महरूम होगा। इसको हाईलाइट कीजिए। बसारत क्या होती है? लॉन्ग टर्म चीज़ों को देख लेना, चीज़ों के अंदर जाना, असल में खो जाना। असल में बसारत क्या होती है देखना। अब जब आंखों से हर चीज़ देखेंगे, गंदी भी देखेंगे, ख़राब भी देखेंगे, मकरूह भी देखेंगे, हराम भी देखेंगे, अब क्या होगा? बसीरत चली जाएगी, अंदर की इंस्टिंक्ट चली जाएगी, अंदर की रोशनी ख़त्म होती है। याद रखिए, जितना हमारी आंखें गुनाह वाली चीज़ें देखती हैं उतनी हमारी अंदर की बसीरत चली जाती है। हक और बातिल का फ़र्क समझ नहीं आता, सच्चे झूठे का फ़र्क नहीं, हमारे हक में क्या बेहतर है क्या नहीं, ये बिल्कुल हमें समझ नहीं आता। इसी तरह ज़ुबान की हिफाजत ना करने वाला दिल की सफाई से महरूम कर दिया जाएगा। यानी बेमुहाबा ज़ुबान जब बोलती है, खूब बोलती है और बोलती और बोलती ही रहती है, तो ऐसे वक्त में फिर ज़ुबान के अंदर से चाशनी चली जाती है, मिठास चली जाती है, ज़ुबान बेलगाम हो जाती है ऐसे वक्तों में। ज़रा सोचिए तो सही, अपने ऊपर लेकर सोचें, दिल धक धक करने लगता है। तो गोया कि ज़ुबान की हिफाजत नहीं तो दिल की सफाई नहीं है। क्या मेरा दिल साफ़ है? मैं दूसरों से हर वक्त बदगुमान तो नहीं हूँ? हर वक्त मुझे दूसरों से गिले, शिकवे और मसाइल का शिकार तो नहीं होना पड़ता? फिर इसी तरह से अब देखिए, पेट में मुशतबे गज़ा। मुशतबे क्या होती है? शुबे वाली, जिसमें शक है, शुबा है, जिसके अंदर आप कह नहीं सकते कि ये मुझे 100% ठीक लग रहा है, कि ये चीज़ मेरे लिए बेहतर थी। मुशतबे यानी शुबे वाली गज़ा डालने वाला अपने बातन को तारीक करेगा। बातन क्या होता है? इनसाइड, अंदर रूह मर जाती है, रूह को एहसास ही ख़त्म हो जाता है कि मुझे अल्लाह ने क्यों पैदा किया, मैंने क्या करना था, मेरे साथ क्या मामला होता। ये वो चीज़ें होती हैं जिसको आज मैं आप अपने ऊपर लेकर सोचें तो हमें इस माशरे की तस्वीर नज़र आ जाएगी। आप रोएं, चिल्लाएं, शोर करें, किसी से मोहब्बत का इजहार करें, किसी से गुस्से से बात करें, ऐसे लगता है किसी के कान से टस से मस नहीं होती बात। वजह क्या है? कि उनको अंदर के अंधेरे लग चुके। आप देखिए, आपको एक नेकी का मौका अपने लिए अपॉर्चुनिटी लगता है और किसी को वो अपने लिए वबाल लगता है। आपका वो शौक है, किसी का वो खौफ है। आपको उसके बाद लज्जत और सुकून मिलता है, उसको थकन होती है। आपको पॉसिबल लगता है, उसको इम्पॉसिबल लगता है। तो फिर क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है। हम सब यहाँ बैठकर अपना कोई गुनाह याद करें। जिससे मुझे नेकी मुश्किल लगती है। फिर इसी तरह क्यामुल लेल से महरूम और मनाजात की लज्जतों हलावत से वे बहरा होगा, यानी जब पेट में शुबे वाले लुकमे जाते हैं ना, तो रात की इबादत की तौफीक कम हो जाती है, अल्लाह के आगे रोना धोना उसकी लज्जत चली जाती है। इन सजाओं को सजा वो लोग समझते हैं जो वक्तन फवक्तन अपने नफूस का मुहासबा भी करते हैं। इसी तरह नेक अमल का और तकवा का बदला भी फिलहाल और सरे दस्त मिल जाता है, जैसा कि अल्लाह सुबहाना तला के नबी ने फरमाया, अन नजरत इलल मरौती सहमु मसमूम मिन सिहामि शैतान, यानी नामहरम औरत की तरफ देखना शैतान के जहर आलूद तीरों में से एक तीर है। जो शख्स सिर्फ मेरी रजा के लिए अपनी नजर बचाएगा, इसको ऐसा ईमान अता करूंगा जिसकी शेरीनी को अपने दिल में महसूस करेगा। आज नजरों की हिफाजत कितनी है। पहले तो लोग स्क्रीन पे बैठकर ये चीजें देखने को बुरा कहते थे, फिर साथ पढ़ने बैठने वाले, आज तो अल्लाह पाक रखे तो नजर पाक हो, बाहर निकल जाएं, घर में हो, फोन पे, नेट में, किसी जगह पे आप मौजूद हैं, आप अपनी नजरों को बचा लें, बड़े ईमान की बात है। अल्लाह आपको मुझे बचा के रखे। और ये भी याद रखिए कि जितना बंदा गुनाहों वाली जिंदगी का आदी हो जाता है, उतनी नेकियों वाली जिंदगी अच्छी नहीं लगती। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगी। आप देखिए कि न्यू बॉर्न बेबी फितरत के तकाजे से पैदा होते ही माँ का दूध मांगता है। याद तो किसी को भी नहीं है, लेकिन अंदाज़ा तो है कि फीका दूध, कोई उसमें बहुत ज़्यादा रंग अमेज़ी नहीं है। लेकिन एक दफ़ा आप बच्चे को मीठे शरबत और कोक और दूसरी चीज़ों पर डाल दें तो फिर उसको दूध नहीं अच्छा लगता। बस जब फितरत पे रहेंगे तो नेकी में ही मज़ा है, और जब नेकी से हटे तो फिर कह लीजिए कि जब माँ ने खुद अपने हाथ से काला पानी दिया मीठा, तो बच्चा दूध क्यों पिए चाहे वो कितना वाइट क्यों ना हो। फिर इसी तरह नेक अमल पर मिलने वाले बातनी सवाब की ये एक झलक है, और जाहरी सजा जजा का पता चल जाना भी कम ही लोगों को होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह के वक्त सोना रिस्क को रोकता है। इसी तरह दूसरी जगह फरमाया, इन्नल अब्दु लयहरुमुल रिस्क बिज़म्बी युसीबहु, इंसान गुनाह की वजह से मिलने वाले रिस्क से महरूम हो जाता है। अब आप बताएं हमारे कल्चर में, हमारे घरों में, और फिर खास तौर पे वीकेंड्स पे किसको सोना सुबह का अच्छा लगता है, किसको शाम। कितने लोग हैं जो यहाँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हो सकते हैं, क्यों नहीं होते। अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि किस कदर तुम पर गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कहाँ प्यार है, नींद तुमको प्यारी है। वीकेंड पे तो दिल करता है सूरज भी ना निकले, जब हमारी नींद बुरी हो जाए और हम लेट लेट के थक जाए फिर कभी सूरज निकले। हजरत उस्मान अनीसापुरी के बारे में आता है कि जुमे की नमाज के लिए जाते हुए इनके जूते का तस्मा टूट गया, इसको ठीक करने लगे और फरमाया, ये इसलिए टूटा कि मैंने जुमे के लिए गुसल नहीं किया था। अल्लाह अकबर कबीरा। आप कहते हैं ना कि जुमे के दिन गुसल वाजिब है, खासतौर पे जो मस्जिद में जुमे के लिए जाए, तो नहीं किया होगा, सुस्ती हुई होगी या रिलैक्सेशन होगी, तो कहते हैं देखा सजा मिली, तस्मा टूट गया। अपने लिए दुआ करे अल्लाह ये फहम दे दे, जहाँ लड़खड़ाएं, जहाँ कोई खराबी हो, कमी हो, वहाँ किसी से ना पूछना पड़े, खुद अंदर से आवाज़ आए कि तुम गलत कर रही हो और ये तुम्हारे अपने गुनाहों की सजा है। दुनिया में जुल्म की सजा मिलने की अजीब मिसाल यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का वाकया है, सभी ने सुनी पड़ी है कहीं ना कहीं से, किस तरह भाइयों को अल्लाह ने फिर उसी भाई के आगे फकीरों के रूप में करार कर दिया। यानी वो भाई जिनको कल तक मान था अपने बहुत बड़ी जमात होने का, आके तसद्दक अलैना की पुकार लगाते हैं कि हम पे सदका ही कर दो, कि इनके हाथों ने जुल्म की इंतहा कर दी और इंतहाई कम कीमत में भाई को बेच डाला, तो अल्लाह ताला ने इन्हीं हाथों को मांगने की हालत में यूसुफ के सामने फैला दिया और कहने लगे, तसद्दक अलैना, हम पर खैरात कीजिए। इसी तरह उस औरत ने यूसुफ के खिलाफ, मन जजाओ मन अरादा बि अहली का सुअन कहकर झूठ बोला तो इसे अनरावत तहु कहकर हक का इकरार करना पड़ा। यानी शौहर के सामने यूसुफ पे झूठा इल्ज़ाम लगाती है और यहाँ भर सरे महफिल सबके बीच में उसको इकरार करना पड़ा कि हाँ ये मैं थी जिसने यूसुफ को वरगलाया था। अगर इंसान महज अल्लाह की रजा की खातिर गुनाह को छोड़ेगा तो इसके समरात को दुनिया में भी पाएगा, इसी तरह नेक अमल का फल भी ज़रूर मिलेगा। जैसा कि हदीस में है, आपने फरमाया, जब तुम माली तंगी में मुबतला हो जाओ तो सदका देकर अल्लाह ताला के साथ तिजारत करो, यानी सदका करो, इससे माल बढ़ जाएगा। हम कहते लो पहले ही थोड़ा है, अब और दे दें, करके तो देखिए। देखिए बाज़ दफ़ा ब्लड में कोई प्रॉब्लम होती है, सारा ब्लड निकालते हैं। कोई कह लो पहले ही बीमार है, अब और ब्लड निकालें, तो कहा जाता है पहले ये गंदा निकलेगा फिर साफ आएगा। तो बाज़ दफ़ा माली तौर पे भी इंसान परेशान हुआ होता है, लेकिन अल्लाह ने उसके लिए खैर रखी होती है उसी में। बाज़ बुज़ुर्गों की एक आयत है कि उन्होंने अपनी जवानी के ज़माने में एक बांदी खरीदी। फरमाते हैं, जब मैं इसका मालिक बन गया तो इसकी तरफ मेरा शौक बढ़ गया, तो मैंने फुकहा से इससे फ़ायदा उठाने के बारे में पूछा। सब ने कहा, हैज आने से पहले किसी किस्म का फ़ायदा उठाना दुरुस्त नहीं, हत्ता कि शहवत की नज़र से देखना भी जायज़ नहीं है। तो मैंने इस बांदी से पूछा, तो इसने कहा कि ख़रीदते वक्त वो हाइजा थी। तो मैंने कहा, मामला आसान हो गया और काम करीब हो गया। मगर फुकहा ने कहा, इस हैज़ का एतबार नहीं, बल्कि इस्तिबरा यानी बरी होने के लिए तेरी मलकियत में मुस्तकिल हैज़ का ज़माना गुजरना लाजमी है। लेकिन मेरे नफ्स की ख्वाहिश इंतहा को पहुंच गई थी, लेकिन मैंने सब्र किया। अल्लाह ने इस सब्र के बदले इससे भी आला और अरफा नेमत अता फरमाई। यहाँ एक फिकी इशू है कि जब भी कोई औरत जंग में कैदी होकर आती है, तो जिसको वो मिलती है तो वो उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता, जबकि उसके एक पीरियड्स गुजर ना जाए। ये शादीशुदा औरतों के लिए होता था, क्योंकि वो पहले शौहरों की ज़ौजियत में होती थी। तो यहाँ ये बात है कि उससे वो एक महीना गुजारना मुश्किल था, लेकिन उसने अल्लाह के लिए सब्र किया तो अल्लाह ने उसको अता किया। फिर आगे हम देखेंगे बातिन की दुरुस्तगी को। अल्लाह ताला के वजूद के दलाइल पर गौर किया, तो मैंने इसको रेत के ज़र्रात से भी ज़्यादा पाया। यानी अल्लाह के वजूद के दलाइल दुनिया में फैली हुई रेत के ज़र्रों से भी ज़्यादा है। फिर ना कोई देखे तो उसकी अंदर की आँख बंद होने की अलामत है। और ये भी देखा कि इंसान अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम पोशीदा तौर पर करता है, मगर अल्लाह ताला इसको ज़ाहिर कर देता है, अगरचे देर से ही क्यों ना हो, लोगों की ज़ुबानों पर ज़ाहिर होती है। बाज़ दफ़ा इसकी गलतियों में लोगों के सामने शर्मिंदगी का सामना भी करता है, जो तमाम पोशीदा गुनाहों का बदला होता है। ये इस बात को बताने के लिए होता है कि एक ज़ात ऐसी मौजूद है जो हर अमल का बदला देती है, इसके सामने कोई चीज़ पोशीदा नहीं। इसी तरह इंसान कोई नेक अमल खुफिया तौर पर करता है, मगर वो लोगों के सामने जाहिर होता है, लोगों के ज़ुबान ज़दे आम हो जाता है, और लोग इसके हुसन को कसरत से जिक्र करते हैं। महासिन क्या होता है? यानी उस चीज़ का खूबसूरत होना। इसके गुनाहों को भूल जाते हैं। ये इसलिए होता है कि इंसान को यकीन हो कि अल्लाह ताला किसी के अमल को ज़ाया नहीं फरमाते। इंसानों के दिलों में किसी की मोहब्बत या नफ़रत इसके ताल्लुक़ मा अल्लाह के बक़दर होती है। ये भी लिख ले, किसी के लिए दिलों में मोहब्बत या नफ़रत अल्लाह डालता है। पहली बात, कितनी डालता है? जितनी उस शख्स को अल्लाह से मोहब्बत होगी ना, उतनी लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डल जाती है, और इसका अपोज़िट भी है। अगर इंसान नेक हो तो लोगों के दिलों में इसके लिए मोहब्बत होती है, और अगर बद हो तो नफ़रत होती है, इसलिए कि लोगों के दिल अल्लाह ताला के कब्ज़े में हैं। अगर इंसान लोगों के साथ मामला दुरुस्त रखकर अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ ख़राब करेगा तो मामला उल्टा होगा, इसकी तारीफ़ करने वाला इसकी बुराई बयान करेगा। देखिए अल्लाह ताला बंदे के साथ कितना रहम करते हैं, और ये उसकी शान है कि वो इंसान के गुनाहों को छुपा देते हैं। याद रखिए कि लोगों के दिल अल्लाह के कब्ज़े में है। मोमिन अल्लाह ताला के करीब होता है, लोगों के भी करीब होता है। हदीस में आतन और बुखारी की रिवायत में भी ये चीज़ आती है, और सूरत मरियम में आता है, इन्नल्लज़ीन आमनू वामिलु सालिहाति सयजलु लहुमुर रहमानु वद्दा, कि जो लोग ईमान लाकर अमल सालेह करते हैं तो अन करीब रहमान उनके लिए दिलों में मोहब्बत डाल देता है। और वो बुखारी की रिवायत भी आप याद कर लें कि अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल से फरमाता है, फ़लाँ से मेरी मोहब्बत है, तुम इससे मोहब्बत करो। तो जिब्रील इससे मोहब्बत करते हैं और ऐलान करते हैं कि अल्लाह ताला फ़लाँ के साथ मोहब्बत करता है, तुम इसके साथ मोहब्बत करो, तो सब मोहब्बत करने लगते हैं। अगर किसी से नाराज़ हो तो जिब्राइल फरमाते हैं, मैं फ़लाँ शख्स से नाराज़ हूँ, तुम भी इससे नाराज़ हो जाओ। तो जिब्राइल भी इससे बुग़्ज़ करने लगते हैं, और आसमान में भी ऐलान करते हैं कि फ़लाँ से अल्लाह बुग़्ज़ रखता है, तुम भी इससे नफ़रत करो। तो तमाम आसमान वाले नफ़रत करने लगते हैं, फिर अहले ज़मीन में भी इसके साथ नफ़रत होती है। तो खुलासा क्या है फिर? अपने आप को मोहब्बतों के पैमानों से परखें। अब आप कहेंगे हमें जो ज्यादा लोग पसंद करते थे जब हम अल्लाह की नहीं मानते थे, तो ये भी तो देखिए ना फिर कौन करते थे। याद रखिए जो अल्लाह को पसंद हो वो आपसे प्यार करे तो खुशी है ना। खुलासा क्या है? जब आप अच्छे काम करते हैं तो अच्छे लोग आपसे प्यार करते हैं, और जब बुरे काम करते हैं तो बुरे लोग आपसे प्यार करते हैं। अब आपका मेरा अपना फैसला कि हम खुद क्या चाहते हैं। कितनी बीवियां जो शिकवे करती हैं शौहर प्यार नहीं देता, कितने माएँ रोती हैं बच्चे प्यार नहीं करते, भाई बहन प्यार नहीं करते, वो मेरे साथ ऐसे हैं वो मेरे साथ वैसे हैं। क्या मैंने आपने इस आईने में अपनी मोहब्बतों को परखा और पाया? और जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे, जितना गौर व फिक्र करेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपको उसके अंदर से सच्चाई नज़र आएगी। ये वो चीज़ें होती हैं जो एक इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह की रहमत बन के आती हैं और इंसान उससे फ़ायदा उठा लेता है और कभी नहीं उठाता। इसके बाद हम देखेंगे ख्वाहिशात नफ्स में इफ़रात। ये बहुत अहम नुक्ता है, इसको नोट कीजिए, क्योंकि गुनाहों की जो वजूहात है उसमें पीछे भी हम पढ़ के आए कि एक बहुत बड़ी वजह नफ्स की ख्वाहिशात है। नफ्स इतना मोटा हो चुका होता है कि वो हमसे ज़्यादा गुनाह कराता है, और अगर सुबह से लेके अभी तक के जो गुनाह थे सिर्फ उनको याद करें, चलें कल के तो भूल गए होंगे, आज के तो याद है ना। आप देखेंगे फजर की छुट्टी सोने की ख्वाहिश बस इसी से लगा लें। दिन का आगाज़ ख्वाहिश नफ्स को पूरा करने में हुआ और उसके बाद तो एक दरवाज़ा खुल गया। थोड़ा सा इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। ख्वाहिशात नफ्स में इफरात, दुनिया की ख्वाहिशात पर तामुल करके, तामुल मीन गौर करना, ज़रा सोचना, इस नतीजे पर पहुंचा कि ये हलाकत की चीज़ें हैं, खराबी के फंदे हैं। अक़ल अगर तबीयत पर गालिब हो तो बच जाएगा, लेकिन अगर तबीयत अक़ल पर गालिब आई तो हलाकत ही हलाकत है। नफ्स की ख्वाहिशात में सबसे ज़्यादा हलाकत खेज जिनसी ख्वाहिशात हैं, इसमें पढ़ने की बिना पर कमी की बजाय इजाफा ही होता रहता है। जब किसी खूबसूरत चीज़ की तरफ मायल होता है तो आम आदत से बढ़कर कुव्वते गरीज़िया हरकत में आती है, और अगर इससे भी ज़्यादा खूबसूरत की तरफ नज़र जाएगी तो हरकत में और इजाफा होगा, खरूजे मनी पहले से ज़्यादा होगी। इस तरह जौहरे ज़िंदगी फना होगा और जल्दी बुढ़ापे के दरवाजे पर पहुंच जाएगा। यानी जितना एक इंसान किसी खूबसूरत चीज़ या खूबसूरत औरत की तरफ देखेगा उसके जिनसी जज्बा ज़्यादा आएगा, और एक वक्त आएगा कि वो वक्त से पहले ख़त्म कर चुका होगा उस चीज़ को जो उसके फिर बुढ़ापे और बीमारियों का ज़रिया बनेगी। इसके बिलमुकाबल किसी बदसूरत औरत के साथ जीमा का मामला हो तो कुव्वत गरीज़िया में हरकत कम होती है, खरूज मनी भी कम से कम होती है, और इश्तियाक बाकी रहता है, नज़र इधर उधर जाती है। यानी बात वाज़े है कि जिस चीज़ को भी ज़्यादा मौका मिल जाता है एक्सपोजर का फिर वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद पेट की शहवत है, इसको भी समझिएगा। मकदार से ज़्यादा खाने वाला अपने नफ्स के लिए बहुत सारी खराबियाँ जमा करता है, इसी तरह इंतहाई कम खाने वाला भी नुकसान से खाली नहीं होता। तो इस नतीजे पर पहुंचे कि हर काम में इतदाल और औसत दर्जा यानी मॉडरेट रहना दर्जे महमूद और सबसे बेहतर है, इसी को इख्तियार करना चाहिए। दुनिया एक खुला मैदान है, इसमें अक्ल से काम लेने वाला ही कामयाब व कामरान है। जिसने ज़िंदगी की लगाम को तबीयत के हाथ थमा दिया इसका जल्द से जल्द हलाक होना यकीनी है। ये तो दुनिया का मामला है, आखिरत के मामले को इस पर कयास करो तो मामला समझ आ जाएगा। देखिए आप कोई चीज़ पसंद करते हैं, बस आपको आइसक्रीम अच्छी लगती है, पहला कप खाएंगे मज़ा आएगा, दूसरा खाएंगे भी आएगा, तीसरे में थोड़ी सी असीरी होगी, और चौथा कप सज़ा, पांचवा तो बिल्कुल ही जुर्म लगेगा। बस जो ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा हम पूरी कर लेते हैं ना फिर वो उनकी लज़त ख़त्म हो जाती है। हर जज्बा जो थोड़ा थोड़ा करके पूरा हो ना उसका फिर बाद में देर तक इंसान एंजॉय करता है। इसकी तो अभी से मिसालें अपनी ज़िंदगी से देख सकते हैं। तो क्या नतीजा क्या निकला, खुलासा क्या है? अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी को इत्तेदाल के साथ इंजॉय भी करें। ये नहीं कहा गया कुछ ना खाओ, कुछ ना पहनो, कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता ना निभाओ, सब कुछ करो लेकिन अफरात और तफरीत से बचते हुए।